दिन भर तारीख 12 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आम आदमी पार्टी ने कहा जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री की जांच का मामला आंतरिक लोकपाल को निशाना केंद्र सरकार पर साधा।
और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, वो पूरी सक्रियता के साथ रमा शंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे।
ले चलेंगे आपको दिल्ली के मोहल्ले में जो कूड़े के ढेर बन चुके हैं। विवेचना में 40 साल पहले इंदिरा बनाम राज नारायण मुकदमे की कहानी जिसने भारत की राजनीति बदल दी।
इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं।
लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर के कथित फर्जी डिग्री विवाद में पार्टी ने एक आंतरिक जांच कराने का ऐलान किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया का नाम लेते हुए केंद्र से उनकी कथित फर्जी डिग्री की भी जाँच कराने की मांग की है। जर्मनी ने अमरीका की तरफ से की गई चांसलर एंगला मर्कल के कथित फोन टैपिंग मामले की जांच खत्म कर दी है। जर्मनी के अभियोग पक्ष के वकील का कहना था कि अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस मामले की जांच जारी रखने के लिए सबूत नहीं दिए हैं। इस खबर के आने के बाद ही अमरीका और जर्मनी के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। एंगला मर्कल ने तो इतना तक कह डाला था कि दोस्तों के बीच ये जासूसी अस्वीकार्य है। पाकिस्तान ने आगाह किया है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था देश के हित के खिलाफ काम करती है तो भविष्य में उसे देश में काम करने नहीं दिया जाएगा। आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान का कहना था कि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं अपनी सीमा के बाहर जाकर अमरीका, इसराइल या भारत के सहयोग से काम कर रही हैं। उन्होंने ये बात सेव द चिल्ड्रन को यहाँ बंद करने और उनके स्टाफ को वापस भेजे जाने के बाद कही। हालांकि संस्था ने इस आदेश का कड़े शब्दों में आलोचना की है। आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली का खान का कहना था,
अगर उन एनजीओ को जो मुकामी है खौफ और खतरा होना चाहिए जो बैरूनी मदद लेकर बैरूनी एजेंडा पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उन्हें खौफ खतरा होना चाहिए। हम उन्हें भी काम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी सिफारिश हो जाए, जितना मर्जी शोर शराबा हो जाए, ये पाकिस्तान को घुन की तरह अंदर से चाट रहा है।
ये थे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान के शब्द। फ्रांस की एक अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रासकॉन को फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम में हुई पार्टियों में वेश्याओं को उपलब्ध कराने के मामले से बरी कर दिया है। इससे पहले स्ट्रासकॉन ने ये कहते रहे हैं कि वो नहीं जानते कि जो महिलाएं इन पार्टियों में शामिल हुई थी वे वेश्याएं थी। कान के अलावा 13 अन्य पर भी यही मामले थे जिनमें से अधिकतर को बरी कर दिया गया है। आज आए इस फैसले ने 4 साल से चल रहे इस मामले को समाप्त कर दिया है। इससे पहले उन पर बलात्कार करने की कोशिश करने के भी आरोप लगे थे लेकिन 2012 में उन पर से आरोप हटा दिए गए थे। फ्रांस की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी ऑरेंज के प्रमुख ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को कहा है कि वे इसराइल का आर्थिक बायकॉट करने का कभी समर्थन नहीं करेंगे। स्टीफन रिचर्ड ने इससे पहले ऑरेंज और इसराइली कंपनियों के वेस्ट बैंक में एक साथ काम करने की साझेदारी को समाप्त कर दिया था। बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ हुई मुलाकात के बाद रिचर्ड ने इस विवाद के लिए माफी मांगी है। अदालत ने बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले की मैगी पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत हम भारत से कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से। जितेंद्र सिंह तोमर का डिग्री विवाद, सोमनाथ भारती का पत्नी से घरेलू हिंसा का आरोप और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच जारी तनातनी। दिल्ली में अपनी पार्टी की सरकार की लगातार चौतरफा आलोचनाओं के बीच आज आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया। पूर्व कानून मंत्री तोमर के कथित फर्जी डिग्री विवाद में आम आदमी पार्टी ने एक आंतरिक जांच कराने की घोषणा की है। साथ ही दिल्ली में लंबे समय से चल रही हड़ताल पर भी राजनीति आज गर्म रही। दिनभर क्या कुछ हुआ, सुनिए पंकज प्रदर्शी की इस रिपोर्ट में।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच खींचतान दिनों दिन नए तेवर दिखा रही है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन देने के मुद्दे पर आज दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, तो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री के विवाद पर आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा और केंद्र से जवाब मांगा। दिल्ली के कई इलाकों को कूड़े का ढेर बनने देने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को जी भर के कोसा, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंच गए।
देखिए, दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, और हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। जब आप दिल्ली सरकार के पास जाते हो, दिल्ली सरकार कहती है काम ले लो हिंदुस्तान की सरकार से, जब आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए दिल्ली की सरकार। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं दोनों। और मैं आपको यहाँ सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये मैं उठाऊंगा। बहानों से आपका कुछ नहीं होने वाला है।
दूसरी ओर तोमर विवाद पर अपना रुख लचीला करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये मामला आंतरिक लोकपाल को सौंपने की घोषणा की। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने माना कि तोमर की डिग्री से जुड़े विवाद से लोगों के मन में सवाल उठे हैं और उनका जवाब देना जरूरी है।
जितेंद्र तोमर के मामले में पूरा मामला, क्योंकि हम साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, इस पूरी घटना से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, आशंकाएं हैं, दुविधा है इस डिग्री को लेकर। तो इस पूरे मसले पर पार्टी ने फैसला किया है कि पूरा मामला जो पार्टी का इंटरनल लोकपाल है, आंतरिक लोकपाल है, उसकी जांच के लिए दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया का नाम लेते हुए केंद्र से उनकी कथित फर्जी डिग्री की जांच की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी राय भी ले रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो स्मृति और कठेरिया के खिलाफ भी वैसी ही तेजी से कार्रवाई करे जैसा उसने तोमर के मामले में किया था।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30% ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन अपराधों के मामले चल रहे हैं, तो पार्टी वो सारे अपराध और कागजात इकट्ठा कर रही है। और दो मामलों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे, एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमा शंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब, जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, वो पूरी सक्रियता के साथ रमा शंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे।
कथित फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र तोमर ने 9 जून को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तोमर की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि हालात इमरजेंसी से भी खराब हैं, और अब ये जंग कौन सी करवट लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
इस बीच दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के पिछले कई दिनों से हड़ताल पर होने के चलते दिल्ली की सड़कें और मोहल्ले कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी महामारी को लेकर आगाह करते हुए स्थानीय सरकार को निर्देश दिया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को मई महीने के वेतन के भुगतान के लिए तत्काल धन जारी किया जाए। अदालत ने टिप्पणी की कि सफाई कर्मचारियों से बिना वेतन के काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली के मोहल्लों का जायजा लेने के लिए जा पहुंचे हमारे सहयोगी सलमान रावी।
मैं इस वक्त गीता कॉलोनी में हूं और ठीक गीता कॉलोनी घुसते वक्त एक चौक है और चौक के सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है कूड़े का, और ये बिल्कुल चाचा नेहरू बाल चिकित्सा जो हॉस्पिटल है उसके सामने का है। गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, चूंकि 15,000 टन कूड़ा दिल्ली की, यानी कि खासतौर पर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर EDMC के सफाई कर्मियों के स्ट्राइक की वजह से पड़ा हुआ है। बहुत परेशान है लोग कई दिनों से इस कूड़े के बीच में रहकर। तो आप कितने दिन से कूड़े के बीच में हैं?
सर, हम लोग आज से करीब समझिए 1 हफ्ता दिन हो गया। कल तो नहीं, नहीं
परेशानी तो आम लोगों को हो रही
है सर। हम लोग बहुत परेशानी, हम लोग सर की रोजी रोटी पे भी अब आफत हो गई है।
पानी जमा हुआ है, ये भी क्या कूड़े की वजह से?
ये इसी वजह नाला जाम है, पानी इसके अंदर पूरा वहाँ तक भरा हुआ, इसलिए ये ओवर हो रहा है
पूरी। मक्खी भनक रही है चारों तरफ,
ये नाली भी हमने अपने आप ही निकाल दी थी दुकानदारी बचाने के लिए।
आपने लोग कह रहे हैं कि खुद से सफाई करनी पड़ रही है नालियों की ताकि पानी जमे नहीं और सड़कों पे ना आए।
जो आपके बार इतना परेशान हो गया हम हद से ज्यादा।
पूरा एकदम पानी भरेगा पूरा एकदम, अब कल तक देखिएगा कि नाला पूरा भर जाएगा। हम यहाँ पर 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं।
आप भी यही रहते हैं सर?
जी हाँ।
कहाँ पे रहते हैं?
गीता कॉलोनी
पास में रहते हैं। तो अंदर गली मोहल्लों का भी बुरा हाल होगा?
पूरे के ढेर लगे हैं इस तरीके से, रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए, ट्रैफिक जाम होता है, कोई गलियों से निकल के जाता है, कोई कहीं से निकल के जाता है, बहुत बुरा हाल है। पूरे रोड जाम है, पूरे से पूरा परवाना रोड क्या, चंदन नगर रोड क्या, कृष्णा नगर रोड क्या, सब पूरे जाम पड़े हुए हैं, पूरे ढेर लगाए हुए हैं कूड़े के।
तो लेकिन एक बात है कि ये पूरे इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी में झगड़ा चल रहा है इसको लेकर, सही है कि अब देखिए दोनों चीजें हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बीजेपी के पास है, दिल्ली सरकार आम आदमी के पास है, अब ये किसकी लड़ाई में कौन फंस रहा है?
ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये लेकिन पब्लिक तो परेशान है ना, ये तो आपस में लड़े जा रहे हैं दोनों पार्टियाँ।
मोदी ने तो सफाई अभियान चलाया था, सफाई अभियान चल रहा है, ये
मोदी ने ये चलाया था कि झाड़ू लगाओ, तो हम लोग झाड़ू रोड पे लगाए, साफ किए अपनी दुकान के आगे, साफ किए घर के आगे, साफ किए। लेकिन अब ये बताओ आम आदमी कैसे मरेंगे, आम आदमी से मरेंगे कि आम आदमी को हम लोग वोट दिए तो आम आदमी के मतलब क्या, आम आदमी कैसे मारोगे कि हम लोग भूखे मरे? ये कूड़ा देखो, ढेरी देखो,
ये फिसल के लेडीज गिर गई, देखो इसके भी,
ये देखिए अभी एक एक कहां से गिरी,
ये अभी
गाड़ी पे,
ये देखिए गाड़ी पे से, बाइक
गाड़ी पे से गिरी, गाड़ी से क्या हुआ यार, गाड़ी से गिरी, कैसे गिरा?
ये रपट गई थी, इस तरफ ला रहे थे गाड़ी,
तो ये जो पॉलीथीन पड़े इस पे,
हां ये कचरा पड़ा हुआ था इस पे,
लोग मोटर बाइकों से फिसल कर गिर रहे हैं, चारों तरफ से चोटें लग रही हैं लोगों को, बहुत बुरा हाल है।
एक अराजकता का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है सड़कों पर, लोग फिसल फिसल के गिर रहे हैं, नालियों के पानी पानी नालियों का पानी जाम है, सड़कों पर आ गया है, बदबू चारों तरफ फैली हुई है, मक्खियां भिनक रही हैं खाने के सामान पर, ये हाल है दिल्ली का। सलमान रावी, BBC, गीता कॉलोनी, दिल्ली।
BBC इंडिया बोल।
हाल ही में म्यांमार में भारतीय सेना ने चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बयान दिया कि भारतीय फौज ने म्यांमार में जिस तरह की कार्रवाई की है वो उन सभी देशों के लिए एक संदेश है जहां से भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है या उसे बढ़ावा दिया जाता है। सवाल है कि क्या सरकार को इस संवेदनशील सामरिक मामले में इस तरह का प्रचार प्रसार करने की जरूरत थी? विशेष रूप से राजनीतिक बयानों से क्या बचा नहीं जा सकता था? इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में बहस होगी इसी मुद्दे पर शाम 7:30 बजे। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जिन्होंने देश की दशा और दिशा ही बदल दी। 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उनकी इस जीत को उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने चुनौती दी। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 40 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। क्या थे इसके न्यायिक पहलू और क्या था फैसला, सुनिए विवेचना में। चालीस साल पहले की बात है, 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थीं क्योंकि वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वो ही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद भी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को 1,11,810 वोटों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन राज नारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था, पर जब नतीजे आए तो राज नारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राज नारायण चुप नहीं बैठे, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अपील की कि चूंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया है, साथ में वोट खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैंबर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राज नारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। कोर्ट में बैठे सभी लोग सन्न हो गए, मतलब साफ था इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो रहा था। इधर नई दिल्ली में समाचार एजेंसियों के टेलीप्रिंटर चल रहे थे। एक प्रिंटर प्रधानमंत्री के चैंबर में था, लगभग 10 बजे यूएनआई के टेलीप्रिंटर पर फ्लैश निकल रहा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुना चुके थे। राज नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के 123 के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया था। राज नारायण की ओर से जिरह कर रहे थे शांति भूषण। मार्च 1975 का महीना, जस्टिस सिन्हा की अदालत में दोनों ओर से दलीलें पेश होने लगी। चुनावों के दौरान रायबरेली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे राम रक्षपाल गुप्ता याद करते हैं।
एक बस सरेनी ब्लॉक की तरफ से आई, मजिस्ट्रेट होने के नाते राजनारायण जी ने मुझे इंगित करके कहा कि ये फर्जी वोटर्स हैं, और मैंने तुरंत उस बस को लालगंज थाने में ले जाकर और सबसे पहले उसके बयान लिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसने कहा कि मैं घुमाने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई ज्योग्राफिकल प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस, इस टाइप की कोई इस एरिया में हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो चुप रहा। तो मैंने फिर उसके सारे पेपर्स लेके जो पैसेंजर्स उसमें थे सबको थाने में बंद कर दिया। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और राजनारायण जी खुश होकर चले गए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया। तारीख तय हुई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही खड़े होने की परंपरा है, पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो। शांति भूषण बताते हैं कि उस दिन किस तरह से अदालत लगी थी।
जिस दिन इंदिरा गांधी आने वाली थी, उस दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय पासेस से एंट्री उस कोर्ट रूम में थी, 12 पासेस उन्होंने दोनों पार्टी के सीनियर एडवोकेट्स को दिए थे। खरे साहब को 12 पासेस कि तुम नॉन लॉयर्स को 12 को जिसको चाहो बुला लो पास, मुझको भी दिए थे 12। तो जब इंदिरा गांधी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खरे साहब की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ ना खड़ा हो, तो वो आधे खड़े हो गए। ये भी ना समझा जाए कि खड़े हो गए, ये भी ना समझा जाए कि नहीं खड़े हुए, तो वो सब हम सब ने नोटिस किया।
अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। शांति भूषण कहते हैं,
ये तो बाद में पता लगा हमें। इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, उनकी रिश्तेदारी थी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जस्टिस डीएस माथुर से। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने उसके बहुत बाद मुझे गोल्फ कोर्स में बताया कि एक दिन जस्टिस डीएस माथुर चीफ जस्टिस अपनी पत्नी को लेके जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ घर पे आए जब फैसला सुरक्षित था, और इनसे ये कहा कि भाई इस केस के फैसले के बाद मुझे ऐसा पता लगा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इशारा था कि अगर तुमने उनके पक्ष में फैसला किया तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना पक्का है। तो ये एक लालच देने की कोशिश हुई,
लेकिन जस्टिस सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जन प्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाई कोर्ट जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की खबर लगते ही प्रधानमंत्री आवास पर एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से मैंने पूछा, कांग्रेस के खेमे में उस समय क्या चल रहा था?
अब ये जजमेंट जब आ गया तो मुझे याद है मैं जगजीवन राम से मिलने गया, बाबू जगजीवन राम जब वाज द नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि बाबू जी अब क्या होगा? कहते भाई कायदे से तो उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए लेकिन वो करेंगे नहीं। तो मेरा मतलब, मैंने कहा आप लोग कुछ करेंगे? कहते नहीं, वो किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं करेगा। अगर वो स्टेप डाउन करती है तो फिर आपस में झगड़ा होगा कि कौन हो सकता है। कहता मैं भी अच्छा, ये कि मिसेस गांधी टू माइंड्स में थी, एक तो भाई के जजमेंट है, दूसरा कि ये बुरा सा लगेगा, मैं नेहरू की बेटी और एक अदालत ने कहा फिर भी नहीं करूँगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अब संजय को जब ये फीलिंग हुआ, उसने कहा कि इस माँ की वीकनेस जानता था, कोई रैलीज वैलीज कराओ, तो उसने आदमियों वगैरह को इकट्ठा किया। बंसीलाल हुआ करता था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, तो उसको कहा, उसने बसों में वहाँ से आदमी लाए और कहा कि देश की नेता इंदिरा गांधी नहीं जाने देंगे, इसे रिजाइन नहीं करने देंगे। तो उससे मिसेस गांधी को ये ख्याल हुआ कि लोग तो मुझे चाहते हैं, चाहे मैं जो, अब अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रहूं।
इस बीच कानून मंत्री गोखले के पास ये सूचना आई कि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी की ओर से मशहूर वकील नानी पालखीवाला को बुलाया गया। पालखीवाला ने सलाह दी हाई कोर्ट में ये मामला ढंग से नहीं लड़ा गया, फिर से सारे पेपर्स तैयार किए गए। आखिरकार इंदिरा गांधी की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 22 जून 1975। ये वैकेशन जज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की ओर से पालखीवाला ने बात रखी, राज नारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई।
Accidentally, I was the vacation judge at that time. And Gokhale, my close friend, he telephoned me.
संयोगवश मैं सुप्रीम कोर्ट में सेशन जज था। गोखले उस वक्त देश के कानून मंत्री थे, मेरे करीबी थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृष्णा अय्यर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जवाब मैंने उन्हें दिया उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मैंने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ संशय था। वजह साफ थी कि वो मुझ पर दबाव बनाकर स्टे लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो गया है और वो इसके खिलाफ अपील कर स्टे लेना चाहती हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपील करें, न कि घर पर मिले।
कृष्ण अय्यर ने पालखीवाला से कहा कि आपको जिरह करने के लिए कितना वक्त चाहिए? 3 घंटे जिरह के लिए और 1 घंटे जवाब के लिए। अय्यर ने फैसला लिया, अदालत इस मामले पर फैसला सुना कर ही उठेगी। और हुआ भी यही, कोई लंच ब्रेक नहीं। शाम 5:30 बजे तक अय्यर मामले की सुनवाई पूरी कर चुके थे और उसके बाद मध्य रात्रि तक अय्यर अपने स्टेनोग्राफर को फैसला लिखाते रहे। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। उनके फैसले के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं, बात भी रख सकती थी, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह या भत्ते ले सकती थी, लेकिन बतौर सांसद न तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती थी और न ही वोट डाल सकती थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, लेकिन कुछ रोक के साथ।
कृष्णा अय्यर का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से बहुत बुजदिल था। उनको चाहिए था कि या वो इंडोर्स करते उस जजमेंट को जो इलाहाबाद की, उन्हें इंडोर्स नहीं किया। उसने कहा कि यही स्टेटस को रहेगा और सिर्फ मिसेस गांधी को यही एक सजा दी कि वो वोट नहीं कर सकती पार्लियामेंट में, बाकी तो सब कुछ है। हम उन दिनों में कहा करते थे, माना जाता था बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी स्टैंड अप नहीं किया। अगर स्टैंड अप किया तो उसी सिन्हा ने किया और किसी ने।
जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। शुरुआत की दिनकर की मशहूर कविता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
आगे गए हैं जिसको रेडियो ने, टेलीविजन ने, कांग्रेस नेताओं ने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, सब लोगों ने ज्यादा सामने लाया कि जैसे उसका प्राइम मिनिस्टर रहना ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना है, आवश्यक माना है कानूनन, और इसके ऊपर उसने फैसला दिया।
जेपी रैली में बोल रहे थे और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।
और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ऐतिहासिक फैसले पर थी ये विवेचना। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। फ्रांस की अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम में हुई सेक्स पार्टियों में यौन कर्मी उपलब्ध कराने के आरोपों से बरी कर दिया है। वैभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
जब फैसला सुनाया गया तब डोमिनिक स्ट्राउस-कान वेश्या मुहैया कराने के 13 अभियुक्तों के साथ थे। स्ट्राउस-कान हमेशा से ही यही कहते आए हैं कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि सेक्स पार्टी में मौजूद कुछ महिलाएं वेश्या थीं। डोमिनिक स्ट्राउस-कान की यौन आदतें फरवरी में फ्रांस के लिल में हुई सुनवाई का अहम मुद्दा था। इस फैसले के साथ 4 साल से चल रहा मुकदमा खत्म हो गया है। स्ट्राउस-कान पर बलात्कार का भी आरोप लगा था जो साल 2012 में हट गया था। हालांकि फ्रांस में यौन कर्मियों की सेवाएं लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उन्हें मुहैया कराना गैर कानूनी है। फैसला सुनाते वक्त मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्ट्राउस-कान यौन कर्मियों से केवल एक ग्राहक के रूप में मिले थे, लेकिन उन्होंने वेश्याओं को कोई भुगतान नहीं किया था। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि स्ट्राउस-कान को इसलिए अपराधी करार नहीं दिया गया क्योंकि बाकियों ने वेश्याओं को पैसे दिए थे। बरी किए गए लोगों में वेश्यालय के मालिक डोमिनिक एल्डरवील या डोडोला समूहे भी हैं, जिस पर वेश्याओं को उपलब्ध कराने का आरोप था। लिल के होटल कार्ल्टन के जनसंपर्क प्रमुख रेन कॉफर एकमात्र दोषी हैं। उन्हें 1 साल की निलंबित सजा दी गई है। अगर डोमिनिक स्ट्राउस-कान दोषी पाए जाते तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती थी। एक वक्त पर फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के इच्छुक डोमिनिक स्ट्राउस-कान ने फैसला सुनाए जाने के वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोर्ट का फैसला आने से पहले वेश्यालय के मालिक डोमिनिक एल्डरवील ने कहा कि यह सुनवाई स्ट्राउस-कान को अपने ओहदे और पद से गिराने के लिए है, परंतु फैसला आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरवरी में 3 हफ्तों तक चली सुनवाई में कई वेश्याओं ने स्ट्राउस-कान के बुरे बर्ताव के बारे में बताया, लेकिन स्ट्राउस-कान का कहना था कि यह सुनवाई उनकी गलत आदतों के बारे में नहीं। स्ट्राउस-कान ने कहा कि वो इन पार्टियों में दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संकट के दौरान सिर्फ दिल बहलाने के लिए गए थे। हालांकि ये फैसला चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि सरकारी वकील ने पहले ही कहा था कि स्ट्राउस-कान को इसलिए बरी किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। 6 में से 5 याचिकाकर्ताओं ने भी उनके खिलाफ आरोप वापस ले लिए थे। स्ट्राउस-कान ये पहले ही मान चुके थे कि इन पार्टियों में वो मौजूद थे, लेकिन उनका ये भी कहना रहा है कि उनको ये पता नहीं था कि वहां आई कुछ महिलाएं वेश्या हैं।
तो फ्रांस की एक अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अध्यक्ष को यौन कर्मी उपलब्ध कराने के अभियोग से बरी कर दिया। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। तो क्या है आदेश जी, बहुत कम समय में?
जी देखिए, फतुल्ला में भारत और बांग्लादेश के बीच जो एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, कल तो बारिश की वजह से दूसरा दिन धुल गया था, लेकिन आज तीसरे दिन खेल हुआ और आज पूरे दिन के खेल में 47.3 ओवर हुए। बांग्लादेश के लिए अच्छी बात यह रही कि उन्होंने 6 विकेट हासिल किए और भारत ने इस दौरान 223 रन बनाए। वैसे आज जब खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 6 विकेट खोकर 462 रन था। भारत की ओर से मुरली विजय ने 150, शिखर धवन ने 173 और अजिंक्य रहाणे ने 98 रनों की पारी खेली। और अब ये कहा जा सकता है कि जो बचे हुए 2 दिन का खेल है, अगर उसमें बारिश नहीं होती तो शायद कुछ रोमांच हो, लेकिन फिर भी ये टेस्ट मैच धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 105 रन देकर 4 और जुबैर हुसैन ने 113 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर के कथित फर्जी डिग्री विवाद में पार्टी ने एक आंतरिक जांच कराने का ऐलान किया है। जर्मनी ने अमेरिका की तरफ से की गई चांसलर एंगला मर्केल के कथित फोन टैपिंग मामले की जांच खत्म कर दी है। पाकिस्तान ने आगाह किया है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था देश के हित के खिलाफ काम करती है तो भविष्य में उसे देश में काम करने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक जिले में बारातियों से भरी एक निजी बस के बिजली का तार छूने से बस में सवार 20 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में फिर से आपसे मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।